ये ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट अंग्रेजी में पढ़ लेता हूं, उसके बाद हिंदी में बोलेंगे. कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉसेस, द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ द मेटीरियल वर्ल्ड बोथ हायर एंड लोअर आर ऑल क्रिएटेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड द ओरिजिनल कंट्रोलर. व्हेन कृष्ण अपियर्ड एज द सन ऑफ नंद महाराज एंड यशोदा, ही डिड सो बाय हिज कास्टलेस मर्सी. Consequently, for him to exhibit his unlimited opulence was not at all wonderful. Indeed, he showed such great mercy that even Aghasura, the most sinful miscreant, was elevated to being one of his associates and achieving Sarupya Mukti, which is actually impossible for materially contaminated persons to attain. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada and Srila Prabhupada ki. The word Maya is also used in connection with love. Out of Maya, love, a father has affection for his child. Therefore, the word Mayanaha indicates that Krishna, out of love, appeared as the son of Nanda Maharaj and assumed the form of a human child, Manujarbha. Krishna is the cause of all causes. He is the creator of cause and effect. And he is the supreme controller. Nothing is impossible for him. Therefore, that he enabled even a living being like Aghasura to attain the salvation of Sarupya Mukti was not at all wonderful for Krishna. Krishna took pleasure in entering the mouths of Aghasura in a sporting spirit along with his associates. Therefore, when Aghasura, by that sporting association, as maintained in the spiritual world, was purified of all contamination, he attained Sarupya Mukti and Vimukti by the grace of Krishna. For Krishna, this was not at all wonderful. Om Ajnanat Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuhun Melitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamakhyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guruh Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tamsajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantaradha Kantanamostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Krupasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. Main sarvapratham sab vaishnavon ka aur khas karke अनेक जो वरिष्ठ वैष्णव बैठे हैं इधर, इनका आशीर्वाद मांगता हूँ ताकि हम श्रीमद् भागवत के इन प्रश्नों से कुछ ऐसे संदेश हमें प्राप्त हो जो हमें हृदय स्पर्शी हो और हमारे आध्यात्मिक जीवन के प्रगति में हमें मदद करे। श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बताते हैं कि जो नित्यम भागवत सेवया रोज भागवत पढ़ते हैं उनको हर दिन ऐसे पढ़ते 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 नए नए तत्व उनको समझने को प्राप्त होते हैं, जो समझने से हमें भगवान के चरित्र और भगवान के गुण और भगवान के चेष्टाएं, लीला चेष्टाएं इत्यादि से भगवान किस तरह के व्यक्ति हैं ये हमें समझने को प्राप्त होता है। और भगवान के संबंध में सही जानकारी बहुत आवश्यक है हर एक भक्त के लिए, क्योंकि अगर हम भक्ति में आगे प्रगति करना चाहते हैं तो हमारे मन में जो भी शंकाएं हैं भगवान के संबंध में ये शंकाएं दूर होना चाहिए। ये शंकाएं एक अंधकार के बराबर हैं। अंधकार जब दूर होगा तभी हम भगवान को, भगवान के सामने हम प्रेम से पेश आ सकते हैं भगवान। तो ये श्लोक में जो पढ़ रहा था ये भागवत के ये 12वें अध्याय दशम स्कंद के, जिसमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं नैतत् विचित्रम, ऐसे बताते हैं। ये बहुत विचित्र बात नहीं है भगवान के संबंध में वो बता रहे हैं कि वो ऐसे वो कृपा बरसाते हैं ऐसे तुच्छ जीवों के ऊपर भी जो अघासुर जैसे राक्षस है, जो भगवान और उनके पार्षदों को निगल कर खत्म करने के लिए आया था, ऐसे बड़े राक्षसों को भी भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। और साधारण मुक्ति नहीं है, ये विमुक्ति है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, उनके स्वरूप में उनको व्यवस्थित किया भगवान ने। तो ये अघासुर के लीला के अंत में ब्रह्मा जी भी आश्चर्य प्रकट करते हैं, परीक्षित भी आश्चर्य प्रकट करते हैं। और इन आश्चर्यों के संबंध में बताया गया है भागवत में उनके लिए क्यों आश्चर्य था और उस आश्चर्य के संबंध में सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला वो बताया है। क्योंकि ये अघासुर की लीला जब हुई तभी ब्रह्मा जी अपने ही धाम में थे, उन्होंने देखा नहीं था अघासुर का वध कैसे हुआ, लेकिन सब सारे दूसरे देवता सब देख रहे थे आसमान में, ऐसे बताया जाता है। इधर नीचे भूमि से लेकर सत्यलोक तक अलग अलग देवता आसमान में आकर वो देख रहे थे लीला को। यह अघासुर जो एक बहुत बड़े महाव्याल के रूप में आया था वृंदावन में, उसके साथ भगवान ने कैसे लीला की और कैसे उनको उद्धार की ये देवता देख रहे थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को तब संदेश मिल गया जब सब देव देवता वाद्य बजाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, भगवान की गुणगान करने लगे, तभी ब्रह्मा जी ने आवाज सुना तो बाहर आ गए, क्या हो गया क्या हो गया ऐसे देखने के लिए। तो तभी उनको पता चला, तो ब्रह्मा जी थोड़े कुपित हो गए। ये कोप भी प्रेम का कोप है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमने इतने सालों साल ये महापापी अघासुर जैसे व्यक्ति की अकाउंट हिसाब रखा है, हमने क्या क्या पाप किया है, क्या क्या दंड उसको मिलना चाहिए, भगवान को ऐसे एक ही क्षण में इसको खत्म करना था तो हमको इतने बड़े काम में क्यों लगाया, ऐसे सोचा उन्होंने। और इतने आसानी से कैसे भगवान ने उद्धार कर दिया उसको, ये बहुत महाआश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी को। और दूसरी ओर ब्रह्मा जी बहुत वो भी खुश हो गए। तो इस विचित्र के संबंध में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, इधर क्या विचित्रता है, इस दुनिया में अगर कोई खूनी व्यक्ति किसी को मारता है, कोई भी व्यक्ति जिनको प्रेम करता है उनको मार नहीं पाएगा, अगर मारेगा भी तो उसको जेल खाने में डाला पड़ जाएगा, है ना, जेल में डालते हैं उसको। और जो व्यक्ति मरता है उसको कुछ लाभ प्राप्त होता नहीं है इस दुनिया में, लेकिन भगवान के संबंध में ऐसे बताया गया है शास्त्रों में, अगर भगवान किसी व्यक्ति को मारते हैं तो भगवान ईर्ष्या से किसी को मारते नहीं है। ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सातवें स्कंद के पहले अध्याय में भी इसके संबंध में युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं नारद को कि भगवान जब शिशुपाल इत्यादि ईर्ष्यालु लोगों को मारते हैं, क्या भगवान के हृदय में भी उनके लिए ईर्ष्या है कि भगवान उनको क्यों मारते हैं? तो भगवान के संबंध में उधर बहुत अच्छा वर्णन देते हैं कि भगवान त्रिगुणातीत हैं, इसलिए उनके लिए कोई दुश्मन नहीं है, उनके लिए कोई मित्र नहीं है, वो तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, अगर भगवान को बोला जाता है, उनका एक नाम बताते हैं रूप गोस्वामी पाद, हत्ता अरि गतिदायक ऐसे बताते हैं। हत्ता का मतलब है मारना, अरि का मतलब है दुश्मन। जिस दुश्मन को भगवान मारते हैं वो मारने से उसका नतीजा क्या है? गतिदायक, उनको गति प्राप्त होता है। इस दुनिया में कोई है एक व्यक्ति को मारकर परम गति उनको प्रदान कर सकते हैं? अगर कोई ऐसे कर सकते हो तो मार सकते हैं लोगों को, हम भी मरना चाहेंगे ऐसे व्यक्ति के हाथ में, है ना? इसलिए बताते हैं हत अरि गतिदायक ऐसे बताते हैं। उनका मारना भी एक लीला है, उनका मारना भी एक प्रेम का प्रदर्शन है, ऐसे बताते हैं। जैसे एक सर्जियन के हाथ में भी एक चक्कू है, एक चोर के पास भी चक्कू है, लेकिन एक ही चक्कू अलग अलग तरह के काम करता है। जो सर्जियन के हाथ में जो चक्कू है वो जो शरीर के कुछ सड़े हुए अंग, जो दर्द देने वाले अंग को काटता है और व्यक्ति को निवारण देता है वो। इस तरह भगवान के संबंध में भी बताया गया है, तथा बचान्ये नरलोक वीरा यह आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम पार्थास्त्र पूता पदमापुरस्य। ऐसे बारों को बताया है, तथैव च अन्ये नरलोक वीरा। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कोटानकोटि सैनिक खड़े थे और सब भगवान कृष्ण को देख रहे थे। यह आहवे युद्ध भूमि के मैदान में कृष्ण मुखारविंदम, कृष्ण के सुंदर मुखारविंद कमल जैसे मुख को सब देख रहे थे और अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टि से देख रहे थे। कुछ लोग भगवान की शूरता, भगवान की महानता को देखकर थोड़े ईर्ष्यालु थे कुछ लोग, और कुछ लोग उनको प्रेम से देख रहे थे, जैसे भीष्म पितामह, ये लोग प्रेम से देख रहे थे भगवान को। इस तरह अलग अलग भावना से भगवान को देख रहे थे। नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम, अभिरामम का मतलब है मनोहर, मन को हरण करने वाला सुंदर स्वरूप भगवान के दिख रहे थे। और इसका नतीजा क्या निकला? जब वो मारे गए, पार्थ अस्त्र पूता, पार्थ के अस्त्र उनके शरीर को शरीर में चुभने से क्या हुआ? पूता, पूता का मतलब है शुद्ध हो गए वो। पार्थ अस्त्र पूता पद्मापुर से अपने परम पद्म को प्राप्त किया उन्होंने, क्योंकि पार्थ जो अर्जुन की अस्त्र भी भगवान की ही कृपा है। भगवान की कृपा में और अर्जुन के अस्त्र में फर्क नहीं है, क्योंकि अर्जुन एक ऐसे शरणागत भक्त है भगवान के, इसलिए उनके अस्त्र जो निकल रहे थे अर्जुन के बाण से, अर्जुन के धनुष से निकल रहे थे बाण, वो बाण राक्षसों को भी नहीं तो कौरव सेना के लोगों को भी मारकर उनको पदम आपुरस से ऐसा बताते हैं, परम पदम प्राप्त कर परम पदम दे रहा था उनको, ऐसे बताते हैं। तो जो लोग भगवान को प्रेम से देख रहे थे, ये बाण उनके शरीर को छूने से उनके शरीर में जो भी कैंसर था, कैंसर नहीं है, जो भी गंदगी था, मल था, कलुष था, उसको खत्म कराया और उनको परम पदम प्रदान किया, तो भगवान के धाम में उनको अपने स्वरूप प्राप्त हो गया उनको। और जो लोग भगवान से ईर्ष्यालु थे उनके भी कलमश को खत्म करके उनको ब्रह्म ज्योति में भेज दिया ऐसे। और जो लोग ऐश्वर्य भावना से भगवान को देख रहे थे, उनको वैकुंठ में भेजा गया ऐसे। इस तरह बताते हैं, जो भी भगवान को देख रहे थे ऐसे उनको परम पदम प्राप्त हुआ ऐसे बताते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कुछ कुछ लोग पूछते हैं भारत में, भगवान ने इतने बड़े युद्ध क्यों रचाया, भगवान को शांति लाना चाहिए, शांति के बदले इतना बड़ा युद्ध करवा दिया भगवान ने, इतने कोटानुकोटि लोग मर गए उसमें। लेकिन भगवान ऐसे व्यक्ति हैं, कोटानुकोटि लोगों को जो मार डालते हैं वो सबको परम पदम प्रदान करने वाले हैं। अगर हिटलर हो, हिटलर ने भी मिलियन 10 मिलियन लोगों को मारा, हमने सुना कोटानुकोटि लोगों को मारा, लेकिन उसके अंदर क्षमता नहीं है लोगों को परम पदम प्रदान करने के लिए, इसलिए उनकी मारना जो है कुछ काम का नहीं है और बहुत बड़ा गलत माना जाता है। लेकिन जब भगवान किसी को मारते हैं उनको परम पदम प्रदान करते हैं ऐसे। ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी को भी पहले बहुत, उनको खुद को बहुत आश्चर्य था जब उन्होंने भगवान की असीम परम कृपा अनुकंपा के बारे में सुना जंगल में, ये पुतना के उद्धार के संबंध में जब सुना था उन्होंने, अहोबकीयम सनकादकूटम ऐसे सुना था उन्होंने। तो जो स्त्री आई थी भगवान को मार डालने के लिए, उनके स्तन से भगवान दूध भी पिया, उनके विष को भी पिया भगवान ने और प्राण को भी पी लिया, और उनको ऐसे स्थान प्रदान की भगवान ने धात्री के रूप में। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को वो लीला बहुत हृदय स्पर्शी लगा उनको, इसलिए वो पूतनावध के बारे में भी बताते हैं। तो जैसे हम भी बताते हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में बताते हैं, मार खे प्रेम दिए, तो मार खाकर प्रेम दिया उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने, ऐसे ही भगवान उनके विष पीकर प्रेम दिया उनको, उनके विष को अपने पास ले लिया और अपने प्रेम को उनको प्रदान किया। इसलिए भगवान हरि ये इसका द्वि नाम मुख्यतम, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ये भगवान हरि का दो मतलब है जो मुख्यतम मतलब है। एक है बताते हैं हरि का मतलब है सर्व अमंगल हरे प्रेम दिए, प्रेम दिए हरे मन बताते हैं, प्रेम दिए मतलब प्रेम देकर अपने चित्त को चोर करते हैं भगवान, ये एक मतलब है। दूसरा मतलब है हमारे सब अमंगलता को कलुष को वो खत्म कर देते हैं ऐसे बताते हैं। तो ऐसे हम अनेक उदाहरण दे सकते हैं कैसे भगवान जिनको मारते हैं उनको विमुक्ति प्रदान करते हैं। इधर आज हम संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे ये अघासुर के संबंध में। मैं खास करके इस लीला को आज लिया, इसका एक महत्व है क्योंकि आचार्य गण ने इस लीला के संबंध में दो विविक्त अलग अलग दृष्टिकोण से इस लीला को समझाया है। एक है, आपने तो सुना होगा अघासुर लीला पहले, लेकिन हम सिर्फ उसका एक सेक्शन लेंगे उसका, जिससे जिसको पढ़ने से जिसको वो थोड़ा पढ़ने के बाद हम ये दो तरह के लेसन जो हम सीखते हैं आचार्यों से उसके बारे में बताएंगे। तो अघासुर के बारे में इधर बताते हैं, अथागनामाव्यपतन महासुर तेषां सुखक्रीडन वीक्षणाक्षमः नित्यं यदन्तर्निजजीवितेप्सुभिः पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्षते। ये बताते हैं अथ अघ नाम अव्यपतन महासुरः, एक महाअसुर जिसका नाम था अघ, वो उधर आ गया वृंदावन में ऐसे बताते हैं, नाम ही था उसका अघ। तो वो माँ बाप तो बच्चों को अच्छा नाम देते हैं, मंगलमय नाम देते हैं, जिसको पुकारने से हमें भगवत चिंतन भगवत स्मरण होता है भारत में। तो ऐसे नाम देने के बदले उनके माँ बाप ने क्या नाम दे दिया उसको, अघ ऐसे नाम दिया था। अघ का मतलब ही है पाप, जैसे पूता ना मतलब क्या है, नॉट प्योर, पूता का मतलब है प्योर, ना का मतलब है नहीं, पूता ना का मतलब शुद्ध नहीं। जैसे हमने सुना दुर्योधन का पहले नाम था सुयोधन, और अपने कार्यकलापों के कारण उसका नाम पड़ गया दुर्योधन। ऐसे इस तरह पुत्र का भी नाम अगस्त्य का भी नाम था अघ। तो कभी कभी किसी व्यक्ति के नाम से पता चलता है उसके क्या कार्यकलाप होते हैं। तो मथुरा में ये एक असुर था ये अघ, लेकिन अभी वृंदावन में आया था एक महाव्याल का रूप धारण करते हुए। देखिए वृंदावन के ब्रजवासियां जो होते हैं इनको उसका नाम नहीं पता था, इसलिए ये लोग उसको महाव्याल महाव्याल करके बोलते हैं। इसमें आता है ना एक गीत में भी गाते हैं गोपी गीतम में व्याल राक्षसात, ऐसे बताते हैं अतति गोपिका नंदनो भवान, ऐसे एक लाइन में आता है व्याल राक्षसात महाव्याल बोलते हैं। तो ये व्याल ये जो बहुत बड़ा सर्प है ये वृंदावन में आ गया था। और बताते हैं इधर तेषाम सुख क्रीडन न वीक्षणाक्षम, ऐसे बताते हैं। वीक्ष का मतलब है देखना, न वीक्षणाक्षम का मतलब है वो सहन नहीं कर पाया ये कृष्ण और बाकी गोप बालक को खेलते हुए देखकर। देखिए अगर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं साथ में वो देखने में भी आनंद आता है किसी को भी, लेकिन ये देखकर ईर्ष्या उत्पन्न हो रहा था इसके हृदय में। कारण क्या है वो बताते हैं कि वो कृष्ण को देखकर तुरंत सोचा इसने ये ही है जो व्यक्ति मेरे भाई और बहन इनको मार डाला, ऐसे सोचा उसने। इनके भाई बहन कौन थे, बका और बकी दोनों, बकासुर और बकी कौन है पुतना, ये दोनों थे। तो इनके बहन भाई से हम पता लगा सकते हैं इनका चरित्र क्या होगा, क्योंकि साधारणतः कोई भी व्यक्ति अगर किसी खानदान में जन्म लिया है उनके बाकी भाई बहन उनके माँ बाप इत्यादि लोगों के चरित्र को देखकर हम समझ सकते हैं ये किस तरह का व्यक्ति होगा साधारण रूप से। लेकिन अगर कोई बच्चा कोई साधु संत महात्माओं के साथ संग करके असुरों के परिवार में भी जन्म लेकर फिर भी वो महान महात्मा बन सकता है जैसे प्रहलाद बने, लेकिन इसके लिए उनका संग अच्छा होना चाहिए। लेकिन यह व्यक्ति का संग क्या था आगे बताएंगे। कंसान अशिष्ट है ऐसे बताते हैं, कंस ने इनको भेजा था वृंदावन में, इसलिए कंस के संग के कारण ये बड़ा दुष्ट बन गया ये अघासुर, और भी दुष्ट बन गया, जन्म से भी दुष्टता और संग भी दुष्टता, इसलिए वो दुष्ट बन गया इसे ऐसे बताते हैं। और ये बच्चों को खेलते हुए देखकर ईर्ष्या कर रहा था। और ये बच्चे जो खेल रहे हैं कृष्ण के बारे में कृष्ण के साथ, इनके बारे में बताया है इस अध्याय की शुरुआत में। वो उधर बताते हैं कि कैसे अनेक ऋषि मुनि लोग वो भगवान के पदकमलों के नाखून से निकलने वाली जो रोशनी है उसको देखने के लिए करोड़ों साल तपस्या करते हैं लोग। लेकिन जैसे हमने सुना तिरुपति गए थे, तिरुपति बालाजी जो है, बालाजी कौन है, बाल का मतलब है बच्चा, जी जी का मतलब है आदरणीय व्यक्ति, बालाजी का मतलब है कृष्ण भगवान जो बाल है बालक हैं, लेकिन वो आदरणीय बालक हैं इसलिए उनका नाम पड़ा बालाजी, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। तो उनके संबंध में बताते हैं कि श्री स्वामी पुष्करिणी का प्लव निर्मलांगा श्रेयोर्तिनो हरिवरंच दशाद्या द्वारे वसंति वरबेत्र हतोत्तमांगा श्री वेंकटाचलपते तव सुप्रभातम, उनके लिए गुड मॉर्निंग बोलते हैं सुप्रभातम बोलते समय बताते हैं कि हे भगवान पुष्करिणी में सुबह सुबह ब्रह्म मूर्ति के समय नहा धोकर ब्रह्मा जी चतुष्कुमार शिवजी और बाकी सब दूसरे अन्य देवता भी आकर आपके दरवाजे में इकट्ठा हो गए दर्शन के लिए, और जब शंख बजता है सब बहुत बड़ा भीड़ भाड़ होता है उधर अंदर जाने के लिए, ब्रह्मा जी भी हैं चतुष्कुमार भी हैं, तो वरवेत्र खड़े हैं जो द्वार में वॉचमैन खड़े हैं, वो अपने हाथ में एक लाठी लेकर सबको मारते हैं, धक्का मत दो, ऐसे माते से मैं ब्रह्मा जी को भी एक ऐसे मिल जाता है, शिव जी को भी मिल जाता है और चतुष कुमारों को भी मिलता है। और इस तरह उनके लाठी का लाठी को सहन करके भी वह अंदर जाकर दर्शन करने के लिए इच्छुक हैं लोग, ऐसे ऐसे एक श्लोक आता है। तो इस तरह भगवान के दर्शन के लिए कितने इच्छुक हैं, कितने अभिलाषी हैं भगवान के महान महान भक्त जो देवता के रूप में इस दुनिया में सेवा करते हैं भगवान की। लेकिन ऐसे देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब देखते हैं कि ये गोप बालक जो कृष्ण के साथ ये वृंदावन के जंगल में खेलते हैं, कूदते हैं, भगवान के जो नाश्ता जो है उसको चोरी करते हैं, भगवान के बांसुरी को चोरी करते हैं, भगवान को भी रुलाते हैं कभी। इस तरह की लीलाओं का देखकर देवता भी समझ नहीं पाते हैं, ऐसे बताया है मुह्यंति यत् सूरयः, ऐसे बताया है। तो ये हमें समझना चाहिए कि ये गोप बालक साधारण नहीं है, ये करोड़ों जन्मों में कृत पुण्य पुंज है, ऐसे बताते हैं। बहुत बहुत कोटान कोटि पुण्य करने के बाद इनको ऐसी पदवी प्राप्त हुआ है कृष्ण के साथ जंगल में रमण रीति में खेलना कूदना, इस तरह की पदवी उनको प्राप्त हुआ है। तो भगवान खुद उनके लिए कृतज्ञ हैं, ऐसे महान भक्तों के सम भगवान सोचते हैं कि इन गोप बालकों के बिना मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा, ऐसे भगवान खुद सोचते हैं ऐसे। तो इसलिए ऐसे बच्चों के साथ भगवान खेल रहे हैं, रमण करते हैं जंगल में। तो इसको देखकर ये अघासुर बहुत ईर्ष्यालु बन गया। तो उसने अपने मन में एक योजना बनाया, ये सब गोप बालकों को कृष्ण के साथ मैं निगल लूंगा, खा जाऊंगा, और अगर ये मर जाएंगे तो क्या होगा, इनके माँ बाप सब जिनको ये बच्चे प्राण के बराबर हैं वो भी सबके सब मर जाएंगे। ठीक ही कह रहा है वो, क्योंकि माँ बाप के लिए जो बच्चे होते हैं प्राण से भी अधिक मूल्यवान होते हैं। इसलिए बताते हैं, इसे बताता है, दृष्ट्वार्बकान् कृष्ण मुखान धासुरः कंसानुशिष्ट सबकी बकानुजः अयं तु मे सोदरनाशकृत्तयो द्वयोर् ममैनं सबलं हनिष्ये। सबलं हनिष्ये, कृष्ण को अपने सब बल के साथ में मार दूंगा, इसके कारण सबके सब ब्रजवासी मर जाएंगे, ऐसे अपने मन में एक योजना बना रहा है। तो आगे जाकर बताता है, इस तरह जब योजना बनाकर उसने क्या किया, इधर बताते हैं, इति व्यवस्या जगरम बृहत् वपुः सयोजना याम महाद्रिपीवरम धृत्वाद्भुतम् व्याप्त गुहाननं तदा पतिव्यशेत रसनाशया खलः। स खलः, इसे बताते हैं, ये कलह व्यक्ति, ये दुष्ट व्यक्ति अघ असुर, वो क्या किया, व्यशेत बताते हैं, ऐसे लेट गया मानो पूर्ण तरीके से सो गया हो, अपने दोनों ऐसे मुख को खोल कर ऐसे सो गया। क्योंकि अगर एक ऐसे महास व्याल होता है, सर्प होता है, तो हमेशा वो अपने जिह्वा को लपलपाता है, ऐसे करता रहता है ना, आपने देखा होगा सर्प का एक फोक्ड टंग होता है, ऐसे हिलता रहता है वो। लेकिन वो ऐसे अपने जिह्वा को नीचे रख दिया, ऐसे मुख खोल कर ऐसे पूर्ण तरीके से सो गया। तो अगर कोई भी व्यक्ति देखेगा सर्प को हिलते हुए तो भाग जाएंगे ना लोग, सब बचेंगे, सबके सब भाग जाएंगे। इसलिए वो ऐसे लेट गया मानो मर गया हो ऐसे। तो बच्चे सब आगे देखिए, बच्चे क्या बोल रहे हैं सब कृष्ण के मित्रों, धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननांतो गिरिशृंगदंष्ट्रः द्वांतांतरास्यो विदधाद्वजिह्वः परुषानि लश्वाद वेक्षणोष्णः। बताते हैं कि सब जब देखा उन्होंने, एक लड़का बोला दूसरे को, हे देखो देखो देखो, ये जो सड़क जैसे दिख रहा है तो लाल लाल कभी कभी मिट्टी लाल होते हैं ना, देखा होगा आपने लाल सड़क, ये देखने में लगता है कि एक बहुत बड़े सर्प का जिह्वा के बराबर दिख रहा है कि नहीं, ऐसे पूछा उसने। हाँ हाँ ऐसे दिख रहा है, दूसरा बोल रहा था ऐसे। तो दूसरे लड़के ने बोला देखो देखो ये जो बहुत बड़ा सफेद रंग का पहाड़ है, मार्बल में बनाया हुआ पहाड़ जैसे दिखता है, ये तो दिख रहा है एक सर्प के दांत के बराबर है कि नहीं। हाँ वो भी बोलता था सत्यम सत्यम ऐसे ही दिखता है। और ऊपर देखो ये क्या बोलते हैं, जबड़ा जबड़ा बोलते हैं उसको, ऊपर के ये सर्प के जबड़े के बराबर समान दिख रहे हैं, लेकिन वो तो बादल है, लेकिन क्यों लाल दिख रहा है बादल, क्योंकि सूर्य के किरणें उसके ऊपर गिर रहे हैं इसलिए वो लाल लाल दिख रहा है। वो कुछ बादल नहीं है, लेकिन क्या सोच रहे हैं इसको, बादल सोच रहे हैं। और नीचे जो है दूसरा जबड़ा है वो क्यों दिख रहा है, ये क्या सर्प का जबड़ा है क्या, ऐसा पूछा किसी ने। दूसरे बोल नहीं 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 नहीं, वो ही बादल जो है उसका प्रतिबिंब दिख रहा है नीचे भूमि में धरती के ऊपर, धरा धरोष्टो अधरा ऐसे बताते हैं, धरा धरोष्टो जलदोत्तरोष्टो, जलधर का मतलब है ये बादल, ऐसे बोल रहे हैं। तो ऐसे बोलकर सब निकट आकर देखने लगे। देखिए अभी तक ये बच्चों को ये बात समझ में नहीं आया कि एक बहुत बड़ा सर्प है, लेकिन ऐसे ही कुछ उत्प्रेक्ष कर रहे हैं इसमें। तो उत्प्रेक्षा मतलब तुलना करना, उपमा करना ऐसे। तो एक लड़का पूछ रहा है कि ये अंदर जो अंधकार दिख रहा है वो क्या है, और इतना दुर्गंध आ रहा है अंदर से, लगता है कि मानो जंगल में कुछ आग लग गया हो, और आग लगते समय अनेक प्राणियां जंगल के आग के अंदर मर जाते हैं और उसके कारण दुर्गंध आता है, इस तरह अंदर से कुछ दुर्गंध निकल रहा है कि नहीं। और दूसरे बच्चे भी बोल रहे थे हाँ ऐसा ही लगता है, इस तरह एक दूसरे से बात कर रहे थे, उत्प्रेक्षा कर रहे थे ऐसे। लेकिन बच्चे सोच रहे थे कि हमने वृंदावन के इस कोने में कभी नहीं आया है, क्योंकि ये जो गोवर्धन पर्वत था वो दूसरी दिशा में था, लेकिन अभी इधर आए हैं, अरे हमने कभी नहीं देखा है, इतना सुंदर दृष्टि, लगता है कि खेलने के लिए अच्छा स्थान है, इतना सुंदर स्थान हमने कभी नहीं देखा है, बहुत बड़े खिलौने के बराबर दिख रहा है। इस तरह उन्होंने योजना बनाया कि यही लगता है कि बहुत बड़ा एक पुतला है, सर्प का पुतला जैसे दिख रहा है, ये तो प्रकृति का ही एक दृष्टि है, आओ हम सब जाकर खेलेंगे ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो कुछ कुछ बालक सोच रहे थे कि ये बहुत बड़ा सर्प ही है, लेकिन ये मर गया है ऐसे, सूख गया है ऐसे सोच रहे थे वो। तो इस तरह योजना बनाते हुए तो वो हाँ इधर देखिए जो क्या बोल रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। अस्मान किमत्र ग्रसिता निविष्टा नयन तथा छे बकवत विनक्ष्यति क्षणादने नेति बकार्य सन्मुखम वीक्ष्यो दसंत करताड़ नैर्ययु। तो बताते हैं देखो अगर ये असली रूप में सर्प होगा तो क्या होगा मालूम है, बकवत विनक्ष्यति, जिस तरह बक मर गया हमारे कृष्ण के हाथ से ऐसे ही ये भी मर जाएगा, इधर ही खड़ा है ना हमारा कृष्ण, अनेन ऐसे बोल रहे हैं, कृष्ण तो पास में खड़ा है, हमें चिंता क्या है, चलो हम अंदर जाकर खेलते हैं, अगर ये हमें कुछ तकलीफ देगा तो भगवत विनंशति ये कृष्ण मार डालेंगे उसको। इस तरह का पूर्ण तरीके से उनको विश्वास है कि कृष्ण मार सकते हैं उनको, क्योंकि उनको अनुभव था बहुत से पहले से, क्योंकि जब ये बड़ा पेड़ जब गिरा था तभी बच्चों ने देखा था, कृष्ण ने ही गिराया पेड़ों को, नलकोर मणिग्रीव के जो तमलार्जुन पेड़ थे, इस तरह गोपों को देखने को मिलता है भगवान किस तरह के चमत्कार करते हैं। इस तरह बताते हैं ऐसे, इसको देखते हुए ताली बजाते हुए मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण को अपने नेत्रों से देखते हुए अंदर भाग गए सब बच्चे। इतने में भगवान ने देखा बच्चों को, अपने मित्रों को, रोकने ही वाले थे भगवान कृष्ण उनको योजना बना रहे थे, लेकिन इतने में सब अंदर चले गए साहब। लेकिन अभी तक ये महाव्याल अपने मुख बंद नहीं किया, कारण क्या है? ऐसे आंखों से देख रहा था अभी कृष्ण कब आएगा अंदर, जब कृष्ण अंदर जाएगा तभी तो मैं बंद करूंगा। तो कृष्ण ने सोचा मेरे भक्तों को अकेले में कैसे छोड़ सकता हूं, मैं भी जाता हूं उनके साथ। इस तरह भगवान अपने आप को बाहर रख नहीं पाए, उनके साथ वो भी भागने लगे अंदर। और अंदर क्यों गए? दो योजना बनाकर, एक है भगवान ने सोचा कैसे इस महाव्याल को मार डालो, और कैसे इसको मारना का मतलब है उसको उद्धार भी करेंगे भगवान जरूर, और कैसे मेरे मित्रों को बचाऊं, दोनों होना चाहिए। देखिए अगर ये महाव्याल को जलाने की कुछ योजना बनाए भगवान तो सबके सब बच्चे भी जल जाएंगे, अगर उसको मारेंगे तो कैसे बच्चों को बचाया जाए, ऐसे सोच रहे थे भगवान। इस तरह जब अंदर गए भगवान तुरंत ये अपने मुंह बंद कर लिया और आसमान में हाय हाय ऐसे ध्वनि गूंजने लगा। तब देवताओं की भी और कंस और इत्यादि कंस के पार्षद उनका भी, क्योंकि कंस और पार्षदों को संदेश जाता था रेगुलर इधर से वृंदावन से क्या हो रहा है, अभी अगासुर पहुंच गया, कमेंट्री जाता था उनको, जैसे क्रिकेट कमेंट्री पहुंचता आजकल है ना, कौन बॉलिंग कर रहा है कौन बैटिंग कर रहा है, ऐसे अभी अगासुर पहुंच गया, मुंह खोल दिया, सब बच्चे अंदर चले गए, अभी अंदर भगवान भी गए, अभी मुंह बंद हो गया, सब ताली बजाने लगे कंस के पार्षद सब और सब देवता, वो चिंता में चिंतामग्न हो गए वो। तो लेकिन भगवान एक क्षण से भी कम समय के अंदर क्या क्या भगवान ने अंदर जाकर उनके गर्दन जो गला जो है उधर जाकर अपने शरीर को विशाल कर दिया, ऐसे भगवान समेट गए बोलते हैं उसको, सट गए बोलते हैं ना, ऐसे इतना अपने शरीर को विस्तृत किया कि अगासुर श्वास नहीं ले पाया। तो उसके दोनों आंख बाहर निकल गए और तुरंत उसी क्षण मर गया वो। और बच्चे जब अंदर जो गए थे वो सब मर गए थे, क्योंकि उसके दुश्वास से दुर्गंध से वो मर गए थे, लेकिन भगवान अपने आंखों की दृष्टि से उनको वापस जन्म दे दिया, उनको निमीलित क्षण ऐसे एक शब्द आता है आगे तो भगवान उनको जान दिया और सबके सब खेलते हुए कूदते हुए बाहर आ गए, ऐसे आता है आगे वर्णन। लेकिन एक दो चीज मैंने जो बोला उसको उसके बारे में हम इसके संबंध में क्या आचार्यगण क्या बताते हैं हम थोड़ा बताकर हम विराम देंगे प्रवचन का। तो ये जो बच्चे अंदर गए इस तरह उसके संबंध में बताते हैं कि कभी कभी भगवान के महान भक्त हनुमान जैसे भक्त उनको जैसे लंका श्रीलंका जैसे जो लंका नरेश था रावण था राक्षसों का राज्य था उधर जाना पड़ता है, जैसे हनुमान जब प्रवेश करने ही वाले थे लंका के अंदर, उधर लंका के द्वार में खड़ी थी लंकिनी, वो बोले कि कोई इस दरवाजे को पार करके अंदर जा नहीं सकता है, क्योंकि जो भी जाते हैं वो मेरा नाश्ता बनते हैं। कौन हो तुम छोटा बंदर इधर से अंदर भाग रहे हो, कौन हो तुम? वो हनुमान बोले कि नहीं मैं अंदर जाऊंगा थोड़ा घूम कर आ जाऊंगा अपने आप, तुम बीच में मत पड़ो। वो बोले कि मैं छोड़ने वाले नहीं हूं। तो अपने बाएं हाथ से हनुमान ने उनके पीठ के ऊपर एक जोर से मारा तो नीचे वो गिर गई, बेहोश हो गई वो। उठकर बोली ब्रह्मा जी ने एक ऐसे मुझे वरदान दिया है कि जो जब एक बंदर आएगा इधर और मुझे पराजित कर देगा उस समय लंका नरेश रावण का सर्वनाश शुरू हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो समय आ गया है, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ तुम अंदर जाओ, तुम्हें कुछ समस्या नहीं, लेकिन जाते समय हमेशा तुम्हारे हृदय में तुम्हारे हृदय के प्राण हृदय के नाथ जो रामचंद्र जी हैं उनको अपने हृदय में धारण करते हुए तुम अपने सब कार्य करके तुम आ जाओ, ऐसे बोली वो। तो हनुमान को आश्चर्य हुआ कि ये तो राक्षसी है, ये भी अच्छा उपदेश दे रही है, कभी अच्छा उपदेश आता है तो हम ले सकते हैं किसी भी व्यक्ति से। तो इस तरह हनुमान को उन्होंने क्यों बताया, हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे लेकिन लंका में सीता की कोज में महल महल में जब घूमते थे, हर महल में उनको अलग अलग घटनाएं देखने को मिली। कहीं तो कुछ स्त्रियां अपने को अलंकार कर रही थी, कभी पुरुष स्त्रियां संभोग कर रहे थे, इस तरह के घटनाओं को उनको देखने को मिली। जब वो रावण के सभा में ऊपर से देख रहे थे, ऐसे ही ऊपर से देख रहे थे नीचे, जब वो नीचे रावण तो लेटा था, आसपास में इतनी स्त्रियां लेटी थी और उनके हाथ में शराब का ये था प्याला था, उनके वो कुछ कुछ लोग बाजते उनके हाथ में वीणा थी, ऐसे सब नाच कर गा कर वो शराब पीकर मांस खाकर वो सो गए थे। और सब सुंदर सुंदर स्त्रियां लेटी थी, क्योंकि रावण ने अलग अलग कोने कोने से दुनिया से लाया था स्त्रियों को उसने। तो हनुमान जब देख रहे थे उन लोगों को, सीता है क्या, ये सीता है क्या, ये सीता है क्या, ऐसे देख रहे थे, तो सबका परीक्षा करना पड़ा उनको। अंत में मिले नहीं सीता, तो ऊपर चले गए माले में बैठकर हनुमान रोने लगे। इतने में हनुमान ने अपने आप को पूछा, क्या मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं कैसे इस तरह की स्त्रियों का परीक्षा कर सकता हूं, ये बहुत बड़ा गंदा कार्य है, हर एक स्त्री को ब्रह्मचारी को माता के रूप में देखना चाहिए, और इस तरह मैं ऊपर से नीचे सब स्त्रियों को ढूंढ रहा हूं, क्या ये सीता का लक्षण है क्या इसमें। बाद में हनुमान अपने आप को बोला, हनुमान ने इतने स्त्रियों को देखने के बाद में मेरे चित्त में किसी भी तरह का कलमश आया नहीं है, कामक भावना उदय नहीं हुआ। कारण क्या है, मेरे हृदय में भगवान रामचंद्र की वो रामचंद्र की मिशन जो है, जिसलिए मैं इधर आया हूं, उसको मैं भूला नहीं, मैं ब्रह्म में नहीं पड़ा हूं, मेरा चित्त शुद्ध है और मैं अभी भी मां सीता माता का ही खोज रहा हूं। मैं इसे हम समझ सकते हैं कि मेरा मन दूषित नहीं हुआ अभी तक, इस तरह हनुमान समझ गए। इसलिए हनुमान ने बोला कि हरेक व्यक्ति के हृदय में हेतु क्या है वो देखना चाहिए, हम किस हेतु के साथ हम कार्य कर रहे हैं, ऐसे बोला इस तरह। तो इस तरह हनुमान अंत में हनुमान को प्राप्त हो गई सीता, अशोक वाटिका में बैठी थी वो। तो बोलने का मतलब क्या है, हनुमान तो गए ऐसे लंका में जो दूषित स्थान था, फिर भी वो खुद दूषित नहीं हुए, शुद्ध का सीता के संबंध में कब्र वापस लेके आया उन्होंने रामचंद्र जी को। इस तरह श्रील प्रभुपाद जी भी अगासुर जैसे अमेरिका के अंदर प्रवेश किया उन्होंने, जैसे आज ही दिन है जब प्रभुपाद डिपार्चर फॉर अमेरिका, आज का दिन है। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका निकलने वाले थे, अपने ट्रंक में भागवतम था उनके पास, जब वो जहाज पकड़ने वाले थे जलदूत, थोड़ा उनके मन में संकोच आया। क्या संकोच था, उन्होंने सोचा कि देखो अमेरिका तो परदेश है, दूसरा प्रदेश है, और उधर लोग तो अंग्रेजी बोलते हैं और मेरा अंग्रेजी बंगाली जैसे दिखता है, जैसे मैं तमिलनाडु से हूं, मेरा इंग्लिश को बोलते हैं टंग्लिश बोलते हैं इसको, तमिल प्लस इंग्लिश टंग्लिश। कुछ कुछ लोग हिंदी बोलने वाले अगर इंग्लिश बोलते हैं तो हिंग्लिश हो जाता है। इस तरह पापा जी का इंग्लिश, पापा जी ने सोचा कि मैं बंगाल का मिलावट है मेरे बात में, क्या समझेंगे लोग मेरी भाषा, और मैं दूर के प्रदेश जा रहा हूं, मेरे हाथ में पैसा नहीं है, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मुझे स्वागत करने के लिए कोई नहीं है उधर, और वो लोग तो पूरे भ्रम में पड़े हैं, क्या समझेंगे मेरे संदेश। इस तरह थोड़ा उनके मन में विचार आने लगा, मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट में जा रहा हूं अमेरिका में। लेकिन उनको थोड़ा विश्वास आया अपने मन में कि मेरे पास ट्रंक में जो भागवतम रखा हूं इसका वितरण करूंगा, तो भागवत जब पढ़ेंगे तभी उनका चित्त शुद्ध होगा। और इतना ही नहीं, मैं अपने आप नहीं जा रहा हूं, मैं मनोधर्म के अनुसार नहीं काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है, मैं गुरु के आदेश को अपने सर के ऊपर लेकर मैं जा रहा हूं अभी अमेरिका, इसलिए मेरे गुरु के आशीर्वाद से मेरा प्रयाण जो है वो सफल होगा। इस तरह सोचकर धैर्य को अपनाकर, प्रभुपाद जी विश्वास को अपनाकर, कृष्ण के स्मरण को अपने हृदय में धारण करते हुए वो अमेरिका के अंदर प्रवेश किया। जब अमेरिका जाकर देखा उन्होंने बॉस्टन हार्बर से, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे तेजी से, रात भर लाइट ऑन रहता है, सिटी नेवर स्लीप्स ऐसा है। प्रभुपाद ने सोचा कि ये लोग सुनेंगे क्या, अगर मैं भागवत के ऊपर बोलूंगा तो सुनने वाले नहीं है ये लोग, इतने तेजी से भाग रहे हैं, इनको मैं हरे कृष्ण कीर्तन कैसे सिखाऊंगा। इनको भागवत का ज्ञान कैसे दूंगा इनको, ऐसे चिंतित थे प्रभुपाद जी। फिर भी अंदर जाकर अंत में एक ऐसे परिस्थिति आया, एक दिन डेविड नाम के व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन वो तो ड्रग एडिक्ट था, तो एक दिन प्रभुपाद जी को मारने के लिए आया वो सुबह सुबह। प्रभुपाद जी वे तुरंत अपने ट्रंक लेकर दरवाजा बंद करके नीचे उतर आए, तो उनके पास में मुकुंद प्रभु थे जाने की, उनका उस टाइम का नाम था माइक और माइक एंड जैन। उधर जाकर कटकटाया दरवाजा, तो वो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे उस टाइम, शादी नहीं हुआ था उनका, वो एक छोटे रूम में रहते थे वो लोग। तो सुबह सुबह दरवाजा खोला माइक, स्वामी जी क्या हो गया आपका? प्रभुपाद जी बोले कि नाउ आई हैव नो प्लेस टू गो, मेरे पास कहीं भी स्थान नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो था डेविड वो ड्रग एडिक्ट, वापस उसका ड्रग एडिक्शन आ गया, तो उसके साथ कोई नहीं रह नहीं सकता है, मैं अभी अकेले हूं, अभी मैं गली में हूं, अभी मेरे पास ये ट्रंक भागवतम है, टाइपराइटिंग मशीन है, बस कुछ नहीं है, तो मुझे पता नहीं मैं किधर जाना है, मुझे पता नहीं, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। तो तुरंत माइक एंड जाने अंदर बुलाया उनको, आइए एक दो दिन इधर रहिए और हम आपके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे ठहरने के लिए। तो इन लड़कों ने उनको ढूंढकर मैचलेस गिफ्ट्स नाम के एक स्थान है न्यूयॉर्क में, वो टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क के पास, तो वो स्थान ढूंढकर प्रभुपाद जी को दिया था वो लोगों ने। देखिए इसका मतलब है मिशनरी। मिशनरी का मतलब है जो व्यक्ति अपने घर की कंफर्ट्स सुख सुविधा को छोड़कर, अपने प्रदेश को छोड़कर परदेश में जाना, जिधर लोगों का भाषा भी हम ठीक नहीं जानते, उस देश में जाना और उस देश में जाकर लोगों को भगवान का एक संदेश देना, और हमारी परिस्थिति के बारे में चिंता नहीं करना कि मैं बूढ़ा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, इसके बारे में चिंता न करते हुए पूर्ण तरीके से भगवान के ऊपर निर्भर रहना और इस तरह भगवान के संदेश को प्रचार करना, इसको मिशनरी बोलते हैं। और प्रभुपाद जी ऐसे मिशनरी थे प्रभुपाद जी, और क्योंकि प्रभुपाद ने अपने सर्वस्व को भगवान कृष्ण को अर्पण की, भगवान कृष्ण उनके पक्ष में थे। और एक हिप्पी ने बोला प्रभुपाद जी को, स्वामी जी बाद में बोला एक दो साल के बाद, स्वामी जी हम कितने पतित हैं, कितने अधम हैं, और इस तरह के बावरी के बीच में हम लोग गंदे लोग हैं, हम शराब पीते हैं, नशा लेते हैं, स्त्री गमन करते हैं, फिर भी हम लोगों के बीच में आकर आप इतने पवित्र परमहंस महाभागवत वैष्णव वृंदावन से आकर हमारे बीच में रहते हैं ऐसे गंदे स्थान में, हमें तो बहुत अफसोस होता है इसके बारे में सोचकर। तो प्रभुपाद जी बोले ये बावरी जो है ये गंदा स्थान नहीं है, ये वैकुंठ है, ऐसे बोले प्रभुपाद जी, क्योंकि आप लोग भगवान का नाम लेते हो, गाते हो, नाचते हो, भारत के अनेक ब्राह्मण लोग भी करने के लिए तैयार नहीं है, उनको बोलो भगवान का नाम लो तो 1000 प्रश्न पूछेंगे, वो बोलेंगे कि हम वैदिक मंत्र का उच्चारण करेंगे लेकिन हरे कृष्ण नहीं जपेंगे। तो इस तरह अनेक लोग धार्मिक होते हैं लेकिन भक्त नहीं बनते हैं, लेकिन आप लोग विश्वास मेरे ऊपर विश्वास रखकर इस दिव्य संदेश को अपनाया और दिव्य नामा का उच्चारण की, इसलिए यह वैकुंठ है, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। ऐसे अगासुर की कथा में क्या हुआ मालूम है आपको? जब कृष्ण ने अगासुर को मारा तो आत्मा का उद्धार होकर वो तो भगवत धाम चला गया और भगवान का एक पार्षद बन गया भगवत धाम में, उसको विमुक्ति मिल गई उसको। साथ साथ भगवान ने ये अगासुर के शरीर को शुष्कम ऐसे बताया, उसको सुखा दिया पूर्ण तरीके से। सूखने के कारण क्या हो गया? ऐसे ही रह गया मुख खोलकर जैसे पहले था। कभी कभी हम वॉल्ट डिस्नी के एसएल वर्ल्ड डिस्नी वर्ल्ड में जाते हैं, आप देखते हैं इसे, है ना, ऐसे सूख गया खेलने के कुछ खिलौने के बराबर। और जो बच्चों ने बोला था अंदर जाते समय ये क्या पहाड़ है क्या, वो पहाड़ जैसे बन गया उनका दांत ऐसे ही। तो वो सड़क है क्या ऐसे पूछा उन्होंने, वो सड़क ही बन गया वो ऐसे ही। इस तरह बच्चों ने जो बोला था वो सत्य हो गया। इस तरह प्रभुपाद ने बोला अमेरिका में जाकर बोला कि ये इज नॉट बावरी है वैकुंठ है, और वो वैकुंठ बन गया वो, क्योंकि उधर इतने भक्तों को बनाया प्रभुपाद जी ने, न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलस में, कैलिफोर्निया में, ऐसे बाद में कैनेडा में, ऐसे यूरोप में, ऐसे गंदे प्रदेश में भी जाकर उसको प्रभुपाद जी ने वैकुंठ के रूप में परिवर्तित किया। प्रभुपाद जी ने अनेक लोगों को उद्धार किया उधर से। और जिस तरह तो प्रभुपाद जी गए ऐसे दूषित स्थान में, लेकिन वापस आए अनेक भक्तों को लेके आकर भारत में आकर इधर भी प्रचार किया प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद डिपार्चर फॉर यूएसए इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे टुडे, ये बहुत शुभ दिन है। जिस तरह हनुमान जी जाकर सीता को वापस लौटने के लिए योजना बनाई, ऐसे ही प्रभुपाद जी अमेरिका में जाकर अमेरिका के लोगों को जागृत करके उधर के पैसा को लाकर इधर भारत में तीन बड़े मंदिर बनाया उन्होंने, जुहू और वृंदावन और मायापुर और अम्बरीश प्रभु जैसे भक्तों को भक्ति में लाकर भगवान की जो लक्ष्मी है उसको भगवान की सेवा में लगाया। और भारत के लोगों के अंदर जो भारत के लोग सोचते थे भक्ति योग जो है कुछ भावुक लोगों के लिए ऐसे सोच रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी इतने किताब लिखकर इतने सारे देशों में प्रचार करके भक्ति योग को इतने अच्छी तरह गहराई से स्थापना की उन्होंने। एक लास्ट एक बात बोलकर हम प्रवचन का विराम देंगे। हमने पढ़ा कि ये जो भक्ति माता होती है उसके दो बेटे हैं वैराग्य और ज्ञान। ऐसे पुराण में कथा आता है कि ये भक्ति माता के दो बेटे दोनों पतले हो गए और कमजोर हो गए, वैराग्य और ज्ञान दोनों इतने कमजोर हो गए उनका हड्डी दिखता था ऐसे, तो दोनों लेट गए नीचे। क्योंकि माँ जो है भक्ति उसकी स्तनपान नहीं कर पाए वो, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य तब हष्टपुष्ट होते हैं जब अपने माँ भक्ति माता से वो स्तनपान करते हैं। भक्ति से उदय होने वाले ज्ञान और वैराग्य एकदम अटाकटा होते हैं, लेकिन भक्ति रहित भक्ति के बिना जो वैराग्य ज्ञान उत्पन्न होता है वो बहुत समय टिकता नहीं है वो। तो इसलिए वो पतले हो गए थे, लेकिन भक्ति माता को भारत में स्थान नहीं मिली। तो ऐसे बताया है भविष्य पुराण में, वो भारत छोड़कर वो विदेश में जाती है वो, और उधर जाकर वो उधर स्प्रेड होती है, उसके बाद वापस लौटती है भक्ति। ऐसे भविष्य पुराण में एक प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है ऐसे, और उस भविष्यवाणी को सत्य कराने वाले श्रील प्रभुपाद जी हैं। क्योंकि भविष्य पुराण में जो बताया है भविष्य में से होने वाला है करके लिखा है भविष्य पुराण में, लेकिन उस भविष्यवाणी को किसने सत्य बात की? श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी विदेशों में जाकर प्रचार करके, हरिनाम का प्रचार करके लोगों को इधर लाकर सारे भारत में ही नहीं लेकिन सारे दुनिया में उन्होंने हरिनाम के प्रचार किए। इस तरह कृष्ण के मित्र जब अगासुर के मुख के अंदर जा रहे थे, लेकिन कृष्ण को देखते ही जा रहे थे, मुस्कुराते ही जा रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे थे। था है तो था वो दूषित स्थान, लेकिन कृष्ण उनके साथ में थे इसलिए उनका पतन नहीं हुआ। इस तरह प्रभुपाद जी भी ऐसे स्थानों में जाकर प्रचार की जो साधु संतों के लिए मना है, वो समुद्र पार करके मत जाओ ऐसे शास्त्र बोलते हैं। कारण क्या है? उधर ऐसे किराट हूणांध पुलिंद पुलकृष आबिर शुंभ ऐसे लोग रहते हैं जिससे हम भी दूषित होने की संभावना है, लेकिन वैष्णव की कृपा इतने वहां इतने बड़ा होता है, तो ऐसे प्रदेश में भी जाकर खुद दूषित न होकर उनको उद्धार करके उन्होंने उनको शुद्ध कराया। शुद्ध्यन्ते तस्मै प्रभा विष्णवे नमः। इस तरह भागवत में जो बताया है वो प्रभुपाद जैसे महान संतों के लिए बताया गया है। ये महान संतों का ऐसे गुण है इसे भागवत में बताया है। हालांकि हम प्रभुपाद जी की नकल नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के गुणगान कर सकते हैं कि उनकी महानता कितना है, उनके भक्ति कितना है उनकी, इसकी प्रशंसा करके हम भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं एक ही दृष्टिकोण आपको दे पाया जो एक आचार्य बताते हैं, जो मैंने आज बताया, दूसरा कभी अगले बार आते समय बताएंगे। तंत्रा श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, कृष्ण भगवान की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।